الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين. آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم انشاء اللہ تعالیٰ سورة الجاثیہ کریں گے. سورة الجاثیہ، جاثیہ جو لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ دو زانوں بیٹھنا، گھٹنوں کے بل بیٹھنا، نیل ڈاؤن ہونا. اور یہ اس سورت کی آیت نمبر 28 میں آیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورت الجاثیہ. اور یہ قیامت کے دن جو تمام انسان گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے، اس پر یہ آیت ہے. اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ بات کی گئی ہے، اور باعث بعد الموت یعنی موت کے بعد جی اٹھنے پہ، قیامت کے دن کے یقین پہ، یہ اس سورت کے کچھ مضامین ہیں. یہ مکی سورت ہے اور مکی دور کے تقریباً مڈ میں نازل ہوئی. یہ حوامیم کے سلسلے کی ایک سورت ہے، سورہ دخان کے بعد آئی ہے اور احقاف سے پہلے نازل ہوئی ہے. اس کے مضامین سورہ دخان سے کافی ملتے جلتے لگیں گے آپ کو. سورہ دخان اس پہ ختم ہوئی تھی کہ قرآن مجید کو اہل مکہ کی زبان میں نازل کیا گیا تاکہ اس کا پڑھنا آسان ہو جائے، اور اس سورت کی جو ابتدا ہے وہ قرآن کریم کے تعارف سے ہی ہوئی. دوسری بات یہ کہ سورہ دخان میں بھی اس کائنات کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت پہ دلائل دیے گئے تھے اور مشرکین کے عقائد کا رد کیا گیا تھا. اس سورت میں بھی اسی قسم کے مضامین ملیں گے آپ کو. تو جیسے کہ مکی سورتوں میں ہوتا ہے، توحید، رسالت اور قیامت کے دن کے بارے میں یقین، اس پہ بات ہوتی ہے، اسی طرح اس سورت میں بھی آپ کو ملے گی. اللہ اکبر، دیکھتے ہیں سورہ کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة الجاثية آیت نمبر 1-21. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم، حوامیم کے سلسلے کی سورت حامیم، اور اس کا معنی چونکہ ہم نہیں جانتے تو ہمیں ہمیشہ یہی کہنا چاہیے، واللہ یعلم مرادہ، اللہ تعالی اس کی مراد کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا اس کا مطلب ہے. اس کا مطلب تو یقیناً ہے لیکن ہم نہیں جانتے. اور میں نے آپ کو دو باتیں اس بارے میں بتائی ہیں، پہلے بھی بتا چکی ہوں، دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ حامیم یا جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں یہ ایسے ہی بھیجا نہیں ہے. ایک تو یہ چیلنج ہے مشرکین مکہ کو کہ آپ اس طرح کا کلام لے آؤ جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، آپ اپنے آپ کو اہل زبان کہتے ہو اور اپنے آپ کو کہتے ہو کہ دوسرے تو عجمی ہیں اور ہم خالص زبان والے ہیں، اور سمجھتے ہو اپنے آپ کو اس زبان کا ماہر، تو آپ ایک کلام ایسا بنا کے لے آؤ. ایک چیلنج ان کو دیا گیا، انہی حروف سے یہ قرآن بھی بنا ہے لیکن اس کا مقابلہ کوئی کر نہ سکا. دوسرا بات یہ کہ جیسے کہ ایک اعلان کیا جاتا ہے متوجہ کرنے کے لیے، لوگوں کی توجہ لینے کے لیے، لوگوں کو تھوڑا جگانے کے لیے، تو جب کہا جائے گا حامیم تو کچھ لوگ متوجہ ہوں گے، ایک دم आपको अपनी तरफ यानी किसी की अटेंशन डाइवर्ट कराना, तो ये भी मकसद है एक। और वाकी वल्लाहु आलम, तंजीलुल किताब, और जैसे कि मैंने बताया कि अक्सर सूरतों में, ऐसा नहीं कि सब में, लेकिन अक्सरियत में आप देखेंगे, सिवाय चंद देख के, आप देखेंगे कि हरूफ मुकतात के बाद किताब की बात की गई, यानी इस कुरान की बात की गई। तंजीलुल किताब, तंजील जो है ये बागे तफईल में से है, मस्दर है, इसमें तदरीज का माना आता है, यानी ओवर टाइम, आहिस्ता आहिस्ता, तदरीजन, यानी एक के बाद एक ऐसे एक किताब नाजिल करना, इस किताब का इस तरह है, यानी नजूल भी इसके अंदर माना है, और इसके अंदर बताया भी गया कि किस तरह नाजिल हुआ, और ये कौन सा नाजिल होना है जो आसमान दुनिया से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पे नाजिल हुआ, वो तंजील कहलाता है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हुआ ना, 23 साल लगे इसके अंदर। और जो लौहे महफूज से आसमान दुनिया पे आया वो इंजाल है, बाबे इफ़ाल से, जिसमें एक दफा को उतरना, वो आहिस्ता आहिस्ता नहीं उतरा, वो एक ही दफा अल्लाह ताला ने लौहे महफूज से आसमान दुनिया पे उतार दिया था इस कुरान को, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर आहिस्ता आहिस्ता ये वही आती रही। तो इसलिए कहीं आपको इंजाल मिलेगा, कहीं तंजील, जब तंजील मिले तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये नाजिल होना है दुनिया में, ठीक है, जमीन के ऊपर। तंजीलुल किताब, नाजिल करना है किताब का, मीन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से, ये पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से नहीं घड़ा, ये अल्लाह की तरफ से है, वो अल्लाह जो अल अजीज भी है और अल हकीम भी है। अब कुरान करीम में अल्लाह ताला की ये दो सिफात जो हैं अक्सर आप देखेंगे साथ साथ आती हैं, अजीज और हकीम, और बहुत दफा आई हैं। अजीज का माना कुव्वत वाला, ताकत वाला, और हकीम हिकमत वाला, और जिसका हुक्म चलता। तो यही क्यों लाई गई यहाँ पे, अल्लाह ताला की तो और बहुत सारी सिफात हैं, इन दो सिफात को लाने का क्या मकसद है, यह अब हमें पता चलना चाहिए, क्योंकि ये कई दफा इस तरह से आया है, अल अजीज अल हकीम, और किताब के साथ या सूरतों के शुरू में, तो क्या मकसद है कि यही दो सिफात, अर रहमान और रहीम क्यों नहीं आ गई, अलीम और हकीम क्यों नहीं आ गई। तो बात यह है कि अगर तो तुम इस किताब को झुठलाते हो, तुम इस किताब को नहीं मानते, इस पर ईमान नहीं लाते जो अल्लाह की तरफ से है, तो याद रखना कि भी तुम बच नहीं सकोगे, इसलिए कि वो ये किताब उस मालिक की तरफ से है, उसकी तरफ से है जो अजीज है, गलबे वाला, ताकत वाला, कुव्वत वाला, उससे बच के नहीं फिर जा सकते, कोई उसकी कुव्वत का मुकाबला नहीं कर सकता, फिर वो तुम्हें अपने जोर से पकड़ेगा, क्योंकि वो गालिब है, उसके गलबे को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये बात को शुरू में ही बता दिया गया ताकि हर बंदा समझ ले कि वो किसका कलाम पढ़ने के लिए जा रहा है, ये मामूली कोई बात नहीं है, ये ऐसे ही नहीं किसी का चलते फिरते किसी का भी किसी की भी बात कर दी जाएगा, चलते फिरते किसी का भी कलाम आ गया सामने और हमने सोचा कि भाई चलो इसको भी पढ़ के देख लेते हैं, ये भी एक किताब है, चलो इसको भी पढ़ लेना चाहिए। समझ लो, जब आप कलाम को खोलते ही हैं और इस सूरह को पढ़ने लगते हैं और भी कई जगह पे, तो समझ जाएं कि आप किसका कलाम पढ़ने जा रहे हैं, उसकी हैबत दिल के ऊपर तारी होनी चाहिए कि ऐसे ही नहीं है ये, इसको मामूली ना जानना, ठीक है। अगर तुम इस कलाम को झुठलाते हो, इसकी आयात को मामूली समझते हो, तो ये उसकी तरफ से है जिसके पास बहुत पावर है, बहुत इख्तियार है, जिसको कोई जेर नहीं कर सकता। अगर तुम इस किताब पे अमल करने को अपने लिए जरूरी नहीं समझते, तो उसके गलबे को महसूस करो, उसके जोर को और कुव्वत को महसूस करो कि फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। तो ये बड़े पावरफुल की तरफ से कलाम आया है, इन बातों को मामूली ना लेना जो आगे आएंगी, यूं ही उनको गुजार ना देना, उन पे गौर करना, अपने अमल में तब्दीली लाना। क्योंकि ये कलाम ऐसे ही नहीं कि किसी ऑथर ने ऐसे लिख दिया, कोई किताब आ गई आपके पास और आपने पढ़ी, उसके बाद साइड पे रख दी। अब आप कई किताबें पढ़ते होंगे, कई उसके अंदर नसीहतें लिखी, आपकी मर्जी है आप माने नहीं माने, लेकिन ये वो कलाम नहीं है, इसको मानना ही है। क्योंकि जो इसकी मुखालफत करेगा तो फिर ये उस अजीज की तरफ से है जो अपने मुखालिफों पे गालिब आ जाता है। लिहाजा इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लें कि हमें क्या करना है इस कलाम के साथ, क्योंकि जो इसके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा कि मैं अपनी सोच या अपने लाइफस्टाइल या अपनी जो मेरी बातें हैं उनसे इसके ऊपर गलबा पा लूंगी, तो ऐसा नहीं होगा, तुम मकलूब होगे। और ये समझ लेना चाहिए कि जब इंसान ये समझता है ना कि अगर मैंने इस किताब के ऊपर अमल किया, इसके हुक्मों पे चला, तो फिर क्या हो जाएगा, मैं दुनिया में मकलूब हो जाऊंगी, लोग मेरे ऊपर हावी हो जाएंगे, लोग मुझे ऐसे कहेंगे, लोग मेरा जीना मुश्किल कर देंगे, मैं क्या करूं। नहीं, ये कलाम जिसके अंदर ये अहकामात हैं, ये कलाम जो आपके पास आया है ये गालिब की तरफ से है, और जो इस पे अमल करेगा अल्लाह ताला उसको गलबा देगा। ठीक है, फिर अल्लाह ताला उसको गलबा देगा, क्योंकि ये उस जो अजीज है उसके कलाम पे आप अमल कर रहे हैं, तो डरने की बात नहीं है। फिर जो हुक्म इसके अंदर आते हैं इनको समझे कि ये अमल करना इसके ऊपर मुझे हमेशा ऊपर रखेगा, गलबा देगा। ठीक है, फियर्स निकाल दें, क्योंकि ये गालिब का कलाम है। देखें, किसी भी बात की अहमियत उसके कहने वाले से होती है। अब आपको एक मिसाल के तौर पे, एक बच्चा कोई बात कहता है, आप उसको इतनी अहमियत नहीं देते, एक बड़ा कहता है थोड़ी और अहमियत देते हैं, एक आपके शहर का कोई पुलिस वाला कोई बात कहता है तो उससे ज्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन आपके मुल्क का सरबराह कोई बात कहता है तो वो तो और ज्यादा अहमियत की हामिल होती। फर्क क्या पड़ा? फर्क ये था कि कहने वाले का फर्क था, चाहे बात सेम ही हो, तो जो कहने वाला होता है ना उसकी अहमियत होती है। ये देखें, ये कलाम उस कहने वाले का पता बता रहा है जो अजीज भी और हकीम भी है। जो अहमियत हमारे दिल में अल्लाह ताला की होगी वही उसके कलाम की होगी। अगर हमारे दिल में अल्लाह ताला की कोई अहमियत नहीं है जैसी होनी चाहिए, तो तभी इस कलाम की भी वो अहमियत नहीं होगी, वो इम्पोर्टेंस नहीं होगी। तो समझना चाहिए कि अगर इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है मेरी जिंदगी में, तो याद रखो ये अजीज की तरफ से है, तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकोगे, तुम इसे भागो नहीं, वरना वो तुम्हें कंट्रोल कर लेगा, पकड़ लेगा, वो कुव्वत वाला है, इसकी मुखालफत करने का ना सोचना। और वो अल हकीम भी है, क्या मतलब कि जितनी बातें इस कलामे पाक में है वो बड़ी हिकमत वाली है, इसकी हर हर हुक्म हिकमत पे मबनी है। ऐसा नहीं है कि देखिए, एक बात होती है ना कि किसी ने वैसे ही कह दी, आज खुश था तो कुछ कह दिया, कल को परेशान है तो कुछ और कह दिया। अल्लाह ताला हिकमत वाला है, उसको हमारी हर जरूरत का पता, रहती दुनिया तक हमारे हालात का पता, वो जानता है कि किस जमाने के लिए कैसे अहकामात देने हैं, क्या चीज हमारे लिए नफामंद है और क्या नुकसानदेह है। उसके हर हुक्म में हिकमत है। जब इंसान ये कहता है ना कि नहीं, इस जमाने के अंदर ये चीजें नहीं चल सकती, ये आउटडेटेड है, तो वो अल्लाह ताला की हिकमत पे शक कर रहा है। जो भी वो करता है उसका हर काम हिकमत पे मबनी है। फिर हम कैसे कह सकते हैं ये वाला हुक्म जो है ना ये नहीं एप्लीकेबल, ये तो अब सदियां गुजर गई, कम अज कम इस जमाने में नहीं हो सकता। नहीं ऐसा नहीं, चाहे वो सूद का हुक्म है, चाहे वो हलाल और हराम के और अहकामात हैं, चाहे वो किसी, उसका हर हुक्म हिकमत पे मबनी, हर फैसला, हर बात। ठीक है, तो हम इस तरह से ये कह के अपने आप को इससे बरी जिम्मा नहीं कर सकते। उसने जो फैसले किए हैं अपनी मखलूक के बारे में या जो अहकामात दिए हैं, वो इस सोच के साथ हम उन पे अमल करें कि ये अल हकीम की तरफ से है, अल हकीम की तरफ से, ये अल अजीज की तरफ से है, जिसके पास एब्सोल्यूट इख्तियार, इंफिनिट इख्तियार है, जो चाहे करे, कोई उसको पूछने वाला नहीं, उसकी अथॉरिटी कि कोई हद नहीं है। क्या फालु लिमा युरीद है, जो ये समझ के इस कलाम को पढ़ना, ये उसकी तरफ से नाजिल करता है। तो पहले किताब नाजिल करने वाले का तारुफ थोड़ा सा हो गया ना, अब जहन एक बन गया। आप देखते हैं जब किताबें कोई भी आप पढ़ते हैं, तो उसके अंदर शुरू में ऑथर के बारे में भी लिखा होता है कि भाई ये है इसका ऑथर, उसकी ये डिग्रियां, उन्होंने यहाँ से इल्म लिया और ये किया, और उसके बाद फिर आगे आपको जहन में बैठ जाता है कि अच्छा भी बड़े किसी बड़े पढ़े लिखे की या बड़े एक्सपीरियंस की मैं बुक पढ़ने जा रहा हूँ। तो ये याद रखें, ये अल्लाह ताला का कलाम है, वो मामूली बात नहीं है, या आप दुनिया की दूसरी किताबों की तरह इसको ना समझें। इन्ना फिस्समावाति वल अर्द, बेशक जमीन में और आसमानों में क्या है, ला आयात लिल्मुमिनीन, आयतें हैं ईमान लाने वालों के लिए, निशानियां। ये जमीन और आसमान अल्लाह ताला की तौहीद को बयान कर रहे हैं, अल्लाह ताला की तौहीद के लिए दलील है कि वो एक ही है जो बनाने वाला है। इसमें भी आसमानों में क्या कुछ है, वो बेशुमार चीजें आसमानों के अंदर, जो कुछ का हमें पता चला, कुछ का तो पता ही नहीं है। आफाक के अंदर नजर दौड़ाओ, आसमानों के अंदर देखो और जमीन में देखो, तुम्हें निशानियां नजर आएंगी। इसकी जो जो ईमान लाने वाले हैं उनके लिए, यानी जो मान जाना चाहते हैं, यहाँ पे ये नहीं कि जो पहले से ईमान लाए हैं, बल्कि जो इस चीज के अंदर भी सीरियस हैं कि हाँ हम वो वाले लोग एक होते हैं ना, जो मैं ना मानू कि उनकी बात होती है, बस कुछ भी बता दो मैंने मानना ही नहीं, उनका अपना जहन होता है, बस उन्होंने उसी पे रहना होता है, जिद में पड़े रहते हैं, वो कहते हैं बस मेरी बात ही सही है, मैंने मानना नहीं है। उनके लिए तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, जो मान जाने वाले हों, जिनका जहन ऐसा हो कि जब मैं कोई चीज हक की देखूंगी तो मैं मान जाऊंगी, उनके लिए बहुत निशानी है। आज इंसान चांद पे पहुंच गया, इंसान ने वहां से खलाओं में जाके देख लिया कि कितना कुछ है इस कायनात के अंदर, कहाँ तक ये फैली हुई है। सूरज के बारे में जानना, दूसरे प्लैनेट्स के बारे में जानना, दूसरी गैलेक्सीज के बारे में जानना, उसके बाद क्या है, जान लिया तो उसके बाद क्या जहन में ये नहीं आया कि इसका कोई बनाने वाला है, और वो कितनी ज्यादा बड़ी कुदरत का मालिक है जिसने इतनी बड़ी बड़ी चीजें बना डाली, उसके पास कितना इल्म होगा, कितनी हिकमत होगी, कैसे वो इनको चला भी रहा है। क्योंकि बना के छोड़ देने से क्या होता, हजारों साल से चीजें बन के चल रही हैं इतनी हार्मनी के साथ, तो अगर इनको कोई वॉच करने वाला ना होता, कोई इनका निगरान ना होता, तो टकरा जाती, खत्म हो जाती, हाथ साथ होते यहाँ पे। लेकिन हजारों साल से सूरज निकल भी रहा है और गुरूब भी हो रहा है, सोचते नहीं, आसमानों पे तारे निकलते हैं, जमीन के अंदर कितना कुछ है जो तुम्हें इनवाइट करता है कि मेरे अंदर गौर व फिक्र करो, ये आयात हैं। एक आयात वो है जो इस कुरान में है, एक आयात वो है जो कायनात में बिखरी पड़ी है। अल्लाह ताला की निशानियां, एक फूल की पत्तियों में भी आपको अल्लाह ताला की निशानी नजर आएगी, एक एक पत्ते के अंदर निशानी नजर आएगी, एक एक चरिंद परिंद के अंदर निशानी नजर आएगी। इंसान गौर तो करे, जितना कुछ निकल रहा है जमीन के अंदर से उसमें निशानियां नजर आएंगी, आसमान कैसे बगैर सतूनों के खड़ा हुआ इसमें निशानी नजर आएगी। कितना कुछ अल्लाह ताला ने बिखेर दिया, कभी नहीं ये सोच आई कि इन पे गौर करें। कितने लोग चल फिर रहे हैं, चाहे वो अपने आप को मुसलमान कहते हो, गैर मुस्लिम हैं, जो भी, सुबह करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, कामों पे जा रहे हैं, आसमान को भी देखते हैं, जमीन को भी देख रहे हैं, अपने सो के जागने को भी देख रहे हैं, इधर उधर भी चारों तरफ निशानियां बिखरी हुई हैं, उनको भी देखते हैं, मगर गौर कितना करते हैं। इसमें निशानी है, निशानी क्या होती, साइन, आयत साइन को कहते हैं, यानी किस चीज की निशानी अल्लाह ताला की तरफ पॉइंट करती है, किसी की निशानी किसी तरफ लेकर जाती है ना, किसी की निशानी किसी का पता देती है, उसकी याद दिलाती है। क्या बात है कि बनाने वाला इनका खालिक याद नहीं कभी आता, क्या बात है कि चीजें देखते हैं कहते हैं वाह आज आसमान का कलर बड़ा खूबसूरत है, लेकिन किसने ये रंग बिखेर दिए इस आसमान के ऊपर, कितने तरह के रंग बिखरे होते हैं, कभी उनसे रब नहीं याद आता। जमीन के ऊपर देखें, समंदर भी हैं, गार भी हैं, पहाड़ भी हैं, सहरा भी हैं, रास्ते भी हैं, कितना कुछ है, कभी नहीं सोच आती। इंसान आज इतना मसरूफ हो गया कि उसने गौर व फिक्र करना भी छोड़ दिया। इसमें आयात है, ईमान लाने वालों के लिए साइंस है, हमको मिल जाएंगे साइंस, ये मौजजात ही तो है हमारे इर्द गिर्द बिखरे हुए। हम कहते हैं मुझे कोई साइन मिले कि एक अल्लाह है, और कितने साइंस चाहते हो, कायनात तो बिखरी पड़ी है उसके साइंस से। मगर चूंकि हम इन चीजों को जब से पैदा हुए देख रहे हैं, इसलिए हमारे लिए कुछ है ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो उसकी पहचान करवाती हैं ये चीजें, एक चीज में भी गौर करें ना आपको उसकी पहचान होती है कि ये कितनी कारीगरी है उस मालिक की, वो कैसा हुस्नो जमाल वाला होगा जिसने ये खूबसूरती पैदा की, वो खुद कितना जमील होगा, उसके पास कितनी पावर होगी, उसके पास कितना इल्म होगा, उसके पास कितनी कुदरत होगी, ताकत होगी, वो कैसे इनको वॉच कर रहा होगा, बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो ये कायनात एक खुली किताब है, इसमें से सीखें अपने लिए, कभी गौर व फिक्र का वक्त निकालें अपने लिए। कुरान हमें जगह जगह गौर व फिक्र की दावत देता है, और फिर वफी खल्क़िकुम, और तुम्हारी अपनी पैदाइश में कितनी निशानियां, तुम्हारी अपनी पैदाइश भी निशानी है कि इंसान अपने आप में भी गौर व फिक्र कर ले, अगर अपने नफ्स में गौर व फिक्र कर ले, अपनी जात में, अपने जिस्म में अगर गौर व फिक्र करे। और कुरान कितनी दफा हमें ये भी गौर व फिक्र कराता है कि देखो तुम कैसे पैदा हुए, अपनी जात को ही देखो, क्या थे, नुतफा थे, अलका, मुदगा, कैसे तुम्हारा दुनिया में आने का रास्ता आसान किया, कैसे तुम्हारे अंदर आजा सारे काम करते, हम तो बाहर से देखते हैं ना, अंदर कितने सिस्टम चल रहे हैं उनके तो कोई हमें पता ही नहीं है, हम चला रहे हैं क्या, या खुद ब खुद ही चलते जा रहे हैं, बाय चांस सारे बन गए, बिल्कुल ठीक ठाक बन गए, या माँ को पता था उसने हर एक चीज बच्चे की बनाई, तुम्हारा तो कोई इख्तियार नहीं, तो वैसे ये भी अंदाजा नहीं तुम्हारे अंदर है क्या क्या।